الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر الذين أذهب الله عنهم الرجس وتأخرهم تذكيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز وقاران محترم فلسفہ شہادت یہ ہمارا موضوع ہے کہ جس کے لیے ہم تمہیدات کو استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ آل عمران کی نسبتاً معروف آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا گمان بھی نہ کرنا کہ وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون اور وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں یہ پروردگار عالم کے ساتھ کی طرف سے بالکل واضح اور دو ٹوک اعلان ہے کہ جس کے اندر کوئی ابہام کوئی اجمال موجود نہیں ہے دیکھیے برادران عزیز ہمارا تعلق اس دنیا کے ساتھ کیا ہے اس تعلق کو سمجھانے کے لیے بہت سی تعبیرات ہیں جو فلاسفہ نے استعمال کی ہیں بڑی کتابیں اس حوالے سے لکھی گئیں ایک کتاب جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو وہ مرحوم آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے اس کتاب کا نام ہی یہ ہے فلسفہ شہادت اور انہوں نے مختلف جہاد سے شہادت کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے ظاہر ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات سے اتفاق کریں مگر ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ جو اس کتاب کے اندر موجود ہے واقع سرمایہ فکر ہے غور و تفکر کے لیے بہت کچھ اس کتاب کے اندر مواد موجود ہے اور وہ کتاب ہے بھی بہت بریف یعنی 100 صفحوں سے بھی کم کی وہ کتاب ہے اور A4 سائز کے وہ صفحے نہیں ہیں یعنی A4 سائز کے صفحوں پر اگر آپ اس کو قیاس کرنا چاہیں تو شاید یہ 40-45-50 صفحے بنے تو مختصر کتاب ہے اگر اس کتاب کے اندر بہت زیادہ سرمایہ غور و فکر موجود ہے اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے اور اس کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا اس کتاب میں شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری اختتام سے کچھ پہلے اس بحث کو ٹچ کرتے ہیں اور اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی ظاہر ہے کہ دنیا ایک ظرف ہے ظرف مکان ہے اور اس میں ایک خاص ظرف زمان کے لیے ہمیں پلیس کیا گیا ہے ہمیں رکھا گیا ہے ہم اس دنیا میں آتے ہیں اپنا وقت پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس دنیا کے ساتھ ہمارا لنک ہمارا تعلق ہمارا ریلیشن کیا ہے یہ وہ سوال ہے جس کو انہوں نے ایڈریس کیا اور اس سلسلے میں مختلف جو فلاسفیز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا خلاصہ بیان पहली फिलॉसफी, पहला फलसफा कि हमारा दुनिया के साथ क्या ताल्लुक है, इसको बयान करने के लिए फलासफा एक मिसाल बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि जो ताल्लुक, और आसान सी सामने की एक मिसाल है कि जो ताल्लुक परिंदे का पिंजरे के साथ होता है और जो ताल्लुक कुएं में गिरे हुए इंसान का कुएं के साथ होता है, बस वैसा ही ताल्लुक हमारा दुनिया के साथ। तकरार करता हूँ कि जो ताल्लुक, जैसे एक तोता है, अगर उसको ले जाकर आप पिंजरे के अंदर बंद कर दें, तो जो ताल्लुक उस तोते का पिंजरे के साथ या किसी और परिंदे को आप ले जाकर उसके अंदर बंद कर दें, एक्वेरियम आपने ले लिया और उसके अंदर आपने मछलियों को डाल दिया, तो उस एक्वेरियम की महदूद फिजा के साथ उस मछली का जो ताल्लुक है, उस पिंजरे के साथ जो उस परिंदे का ताल्लुक है, कुएं में गिरे हुए शख्स का जो कुएं के साथ ताल्लुक है, बस वैसा ही ताल्लुक हमारा इस दुनिया के साथ। आप अगर गौर करें तो बजाहिर ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है कि हाँ, ये बात तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इंसाफ की बात यह है कि इस्लाम इसको एग्री नहीं करता, इस्लाम इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये इस्लाम की पेश करता फिलॉसफी नहीं है, ये फिलॉसफी है उन अफराद की कि जो इस तरह से जिंदगी का तसव्वुर पेश करते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है। जाहिर है कि आप इंसाफ से मुझे बताइए, उस तोते को जब पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, तो अगर उसे कभी मौका मिले और वो वहां से उड़ जाए, तो क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे? वो शख्स के जिसको कुएं के अंदर गिरा दिया गया है, अगर उसे मौका मिले और वो कुएं से बाहर आ जाए, तो क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे? जाहिर है ये काबिल मजम्मत तो नहीं है, कंडेमनेशन के काबिल तो नहीं, इसकी तो तारीफ की जाएगी कि इसने अपनी जान छुड़ाई। वो मछली भी जिसको आपने एक्वेरियम के अंदर पाबंद कर दिया है, वो किसी तरीके से राह बना ले और बाहर निकल जाए और दरिया और समंदर की वसअतों में तैरना शुरू कर दे, तो क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे? आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक किया, यही उसको करना चाहिए था। अगर बरादरान अजीज यही ताल्लुक हमारा दुनिया के साथ है, तो उसका नतीजा ये है कि खुदकुशी को पसंदीदा होना चाहिए कि एक इंसान जो है वो खुदकुशी करे और अपने आप को इस दुनिया की कैद से आजाद करवा ले। आपने पिंजरे से तोते को निकलने का मौका फराहम नहीं किया, वरना वो तो तोड़ने के लिए बेताब है, वो तो तोड़ने के लिए तड़प रहा है, वो तो बेचैन है। अगर उसके इख्तियार में हो तो वो तोता, वो बर्ड, वो परिंदा उस केज को, उस पिंजरे को तोड़े और वहां से वो उड़ जाए। अगर यही फिलॉसफी है हमारी दुनिया के साथ ताल्लुक की, तो फिर बरादरान अजीज इंसाफन उन लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो खुदकुशी करते हैं और दुनिया की सहूलतों से अपने आप को आजाद कर लेते हैं। यानी इस बुनियाद के ऊपर हाराकारी का एक पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है जापान में और दीगर ममालिक के अंदर, जहाँ पर खुदकुशी को अप्रिशिएट किया जाता है। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, यानी आखिर में परेशान होकर, बीमार होकर, इतनी जहमतें बर्दाश्त करने के बाद अगर मरना ही है और मरने के बाद कुछ नहीं है, तो फिर इससे बेहतर नहीं है कि जो काम 10 साल के बाद होने वाला है, 50 साल के बाद होने वाला है, 70 साल के बाद होने वाला है, वो अभी क्यों ना हो जाए? इसी बुनियाद पर मर्सी किलिंग को जस्टिफाई किया गया कि अगर दम निकलने में तकलीफ हो रही है तो उसको हटाओ और उसे इस दुनिया की कैसे आजाद कर दो, तो फिर तो ये तमाम तरह चीजें जस्टिफाइड होंगी, फिर तो इन सबकी जस्टिफिकेशन हमारे पास आ गई। ये ताल्लुक हुआ है तो तोते का पिंजरे के साथ ताल्लुक है, हम भी उसी तरीके से दुनिया में कैद हैं। जब जिसको मौका मिले वो खुदकुशी करे, सुसाइड कमिट करे और अपने आप को दुनिया की इन पाबंदियों से आजाद करवा ले। मगर याद रखिएगा बरादरान अजीज, इस अप्रोच का दूसरा नाम है मैदान हयात से फरार इख्तियार करना। फरार वो इख्तियार करता है जो फरार का मानने वाला हो, हैदर कर्रार का मानने वाला कभी फरार इख्तियार नहीं। जो मैदान जंग से कभी फरार ना करता हो, वो मैदान हयात से क्यों कर फरार इख्तियार करेगा? तो जो मौला का दिया गया दर्ज है वो तो यह है कि डटकर मुकाबला करो। तो ये एक फिलॉसफी है कि जिसको बहरहाल इस्लाम इसके ऊपर क्रॉस लगाता है। इस्लाम कहता है कि बजाय कितना ही ये फैसिनेट करे, कितना ही अच्छा लगे, जहन में बहुत ज्यादा मुजयन होकर इसका नश बैठ रहा हो, लेकिन हम इसको कबूल नहीं करते। इसका नतीजा ये है कि दुनिया कुछ नहीं है। और दुनिया के आगे भी कुछ नहीं है। जब दुनिया कुछ नहीं है और दुनिया के आगे भी कुछ नहीं है तो फिर हमें कैद कर दिया गया है। जिसको मौका मिले वो उस परिंदे की तरह से उड़ने की कोशिश करे कि जिसको कभी किसी मौके पर परिंदे का दरवाजा खुला मिल गया और उसने एस्केप करने का फैसला कर लिया। हम उसकी मजम्मत नहीं करते। अगर अगर कोई खुदकुशी करे वो काबिल मजम्मत है। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल पोलराइजेशन की तरफ 180 डिग्री के ऊपर, यानी कि इस एक्सट्रीम पर और अब ये दूसरा एक्सट्रीम। अगर मुताहरिक ने मौलाना रूम के हवाले से, अब जाहिर है उनकी मसनवी बहुत मारूफ मौलवी मानवी मसनवी मौलाना रूम, उनके हवाले से नकल किया और एक मशहूर फिलासफर को कोट किया, ग्रीक फिलासफर जालिनूस। ये मौलाना रूम उनको कोट करते हैं और वो फरमाते हैं कि जालिनूस का ये मानना था कि मुझे ये जिंदगी इतनी पसंद है, ये जिंदगी मुझे इतनी अजीज है, इट इज सो डियर टू मी, कि अगर मुझे इस तरह से जिंदा रहने का मौका मिले कि ना इस जिंदगी में कोई सुकून हो, ना इस जिंदगी के अंदर कोई आराम हो, इस जिंदगी में कोई कंफर्ट ना हो, तो भी मैं जिंदा रहने को पसंद करता हूं, मैं मौत को ना पसंद करता हूं। जो मैंने आपसे अर्ज किया वो जवाब, उसके लिए खुद उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस तरह से जिंदा रहने का मौका मिले, तवज्जो कीजिएगा, कि मेरा पूरा वजूद खच्चर के अंदर डाल दिया जाए, सिर्फ मेरा चेहरा बाहर, और उस चेहरे के जरिए से मुझे सांस लेने का मौका मिले और मुझे इस तरह से जिंदा रहने का मौका मिले, इस तरह की जिंदगी को भी मैं मौत पर तरजीह देता हूं, पसंद करता हूं। आपने और फरमाया, यानी जिंदगी के अंदर कोई दोस्त ना हो, कोई मजा ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई हदफ ना हो, कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, कोई कंफर्ट ना हो, ऐसी जिंदगी हो कि जो सरासर इबरत बन जाए, मगर उसके बावजूद मैं जिंदा रहने को पसंद करता हूं, मैं मौत को ना पसंद करता हूं, मैं मौत पर बहरहाल इसको तरजीह देता हूं। कहां वो एक फिलोसफी कि जिसके अंदर यह कहा गया कि जनाब अली सब कुछ मौत है, पिंजरे के अंदर जिस तरह से तोते को कैद कर दिया गया है उसी तरह से तुम्हें दुनिया के अंदर कैद कर दिया गया है, बिल अगर तुमने मर जाना है तो आज क्यों नहीं। और कहां ये फिलोसफी कि जिसके अंदर बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर कि मौत का मतलब है फना, मौत का मतलब है खत्म हो जाना। जब मौत खात्मे का नाम है और जिंदगी बका का नाम है तो फिर जिंदा रहो, चाहे किसी तरह से भी तुम्हें जिंदा रहने का मौका मिले। सो मच सो आई रिपीट कि अगर पूरा वजूद खच्चर में डाल दिया जाए और सिर्फ सांस लेने के लिए मुंह बाहर, तो इस तरह से भी अगर तुम्हें जिंदा रहने का मौका मिले तो ऐसी जिंदगी को भी मौत पर तरजीह दो। इस्लाम किसको सेकंड करता है, इसको या उसको? ना इसको ना उसको। इस्लाम ना इसको पसंद करता है ना इसको पसंद करता है। उस फिलॉसफी का नतीजा क्या है? उस फिलॉसफी का नतीजा यह है कि जनाब अली दुनिया कुछ नहीं, और इस फिलॉसफी का नतीजा यह है कि दुनिया सब कुछ है। एक ने कहा दुनिया की कोई हैसियत नहीं और दूसरे ने कहा कि दुनिया सब कुछ है। इस्लाम क्या कहता है? आगे मुताहरी ने वाकया इसको बड़ा एलोक्वेंटली एक्सप्लेन किया। वो फरमाते हैं कि इस्लाम की नजर में इंसान का दुनिया से वही ताल्लुक है जो एक तालिबे इल्म का स्कूल के साथ होता है, जो एक किसान का खेत के साथ होता है। एक तालिबे इल्म का जो स्कूल के साथ ताल्लुक है, मदरसे के साथ ताल्लुक है, जो ताल्लुक उसका स्कूल के साथ, जो ताल्लुक एक फार्मर का फील्ड के साथ है, एक किसान का खेत के साथ है, का बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक एक इंसान का दुनिया के साथ। इसका मतलब क्या है? क्या स्कूल सब कुछ है? जवाब जी नहीं। क्या स्कूल कुछ भी नहीं है? जवाब जी नहीं। क्या खेत सब कुछ है? जवाब जी नहीं। क्या खेत कुछ भी नहीं है? जवाब जी नहीं। स्कूल जाओ एक अच्छे दिन की उम्मीद पर, खेत में काम करो एक अच्छे दिन की उम्मीद पर। देखिए बरादरान अजीज, वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है, हो सकता है कि इब्तिदा में उसे स्कूल जाना अच्छा ना लगे, जिस तरह से इस दुनिया में बच्चे को आना अच्छा नहीं लगता, जो कल बात भी हुई कि वो रो रहा है क्रिया कर रहा है, मगर उसके तकामुल के लिए, उसकी तकमील के लिए, उसकी तरक्की के लिए जरूरी है कि वो इस दुनिया में आए सांस ले, उसे अच्छा नहीं लगा, मगर लेटर फेज में वो समझ जाएगा कि उसे इस दुनिया में क्यों भेजा गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप जानते हैं इब्तिदाअन बच्चों के लिए मुश्किल होता है कि स्कूल के अजनबी माहौल में अपने आप को एडजस्ट करें, लिहाजा बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं, गेम्स वहाँ पर रखे जाते हैं, खिलौने रखे जाते हैं वहाँ पर, उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ों को फराहम किया जाता है, टॉफीज रखी जाती हैं जिसके ज़रिए से उनको रागिब किया जा सके कि वो यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करें। मगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, इब्तिदाअन जो माँ बाप भेज रहे हैं वहाँ पर स्कूल में तो क्यों भेज रहे हैं, और बाद में लेटर फेज के अंदर ये बच्चा बड़े होने के बाद जब मैच्योर हो जाता है तो यूनिवर्सिटीज जाने के लिए तैयार हो जाता है, दूसरे शहर और दूसरे मुल्क जाने के लिए तैयार हो जाता है, ये क्यों तैयार हो जाता है? अब तो वो खुद से जा रहा है, अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहा है, गमगीन भी है, दिल दुखावा भी है कि अच्छा मैं माँ बाप से दूर जा रहा हूँ, मगर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अमरीका जा रहा है, कैनेडा जा रहा है, इन तमाम तर ममालिक में वो जा रहा है, क्यों जा रहा है? एक अच्छे दिन की उम्मीद पर जा रहा है। वो स्कूल जा रहा है इसलिए नहीं कि स्कूल सब कुछ है, और इसलिए भी नहीं कि स्कूल कुछ भी नहीं है, वो इसलिए वहां पर जा रहा है कि वो पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ हासिल करेगा, और एक वो दिन आएगा जब उसे डिग्री थमा दी जाएगी कि नाउ यू आर क्वालिफाइड एनफ टू गो बैक, अब तुम इस काबिल हो गए हो, वापस जा सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसने अपनी असल को फरामोश नहीं किया, अपनी रूट्स को नहीं भूला, अपनी ओरिजिन को इसने फरामोश नहीं किया, तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि हाँ इसी दिन के इंतजार में तो मैं यहां पर था कि मुझे सनद मिले और मैं वापस जाऊं। अब जब वो वापस जा रहा है तो जाहिर है कि वहां के माहौल में जब उसने इतना अरसा गुजारा है तो आप इंसाफ से मुझे बताइए, वहां पर भी कुछ ना कुछ मैदान कल्बी इंक्लिनेशन डेवलप तो हो चुका है, स्कूल के बहुत से कुलीग्स हैं, साथी हैं, पीयर्स हैं, क्लास फेलोज हैं, असातिज़ा हैं, वो सब हैं, तो वहां उनसे आपको जुदा हो रहा है, और जुदा हो रहा है तो दिल दुखी हो रहा है। क्या आप में से कोई एक भी उसको ये मशवरा देगा कि हाँ भाई तुम्हारा 8-10 साल का साथ है लिहाजा आप स्कूल ही के अंदर रहो? आप में से कोई ये मशवरा देगा? आप में से कोई ये मशवरा नहीं देगा। आप यही कहेंगे कि हाँ तुम्हें दुख होना चाहिए, तुम्हारे दोस्त हैं वो छूट रहे हैं, तुम्हारे असातिज़ा हैं वो छूट रहे हैं, तुम्हें दुख होगा, मगर तुम यहां आए क्यों थे? यहां के बनने के लिए या यहां कुछ बनने के लिए? तुम यहां के बनने के लिए नहीं आए, यहां कुछ बनने के लिए आए थे, और फिर तुम्हारा ताल्लुक असलन जहां से है वहां पर तुम्हें पलट कर जाना था। अब जब तुमने वो सब कुछ हासिल कर लिया कि जो तुम्हारा यहां मकसूद था, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, तो आओ पलट कर वापस आओ, तुम्हारे जो असल रिश्तेदार हैं वो तुम्हारे मुंतजिर हैं, वो ये कह रहे हैं पलट आ नफ्से मुतमइन्ना के साथ पलट आ। कि जिस तरीके से वो स्कूल में जाता है कुछ बनने के लिए, वो स्कूल का बनने के लिए नहीं जाता, स्कूल में कुछ बनने के लिए जाता है, उसी तरीके से खुदा ने दुनिया में भेजा है दुनिया का बनने के लिए नहीं, दुनिया में कुछ बनने के लिए। ये परवरदिगार आलम का एहसान है, जिस तरीके से स्कूल के अंदर असातिज़ा होते हैं, किताबें होती हैं, उसी तरह से दुनिया में भी परवरदिगार आलम ने नबियों के जरिए, इमामों के जरिए असातिज़ा का एक सिलसिला भी कायम कर दिया, किताब भी भेज दी, और फिर उसके बाद कहा कि इसको पढ़ते जाओ, वो कुछ करते जाओ जो तुमसे डिमांडेड है, और उसका नतीजा ये होगा कि दुनिया में तुम कुछ ऐसे बन जाओगे कि जब यहां से पलटो तो तुम्हारा नफ नफ्से मुतमइन्ना बन चुका होगा, अब तुम्हारे नफ्स में इस्तेराब नहीं होगा, अब जब तुम यहां से जाओगे तो तुम्हारा दिल मुतमइन होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस पूरे फलसफे के अंदर शहादत कहां है? ये तो नॉर्मल डेथ है कि जिसके तहत एक इंसान चला गया, वो शख्स काबिल मुजम्मत है कि जो स्कूल जाने के लिए तैयार ना हो, वो शख्स काबिल मुजम्मत है जो स्कूल जाए, पास हो जाए और वापस आने के लिए तैयार ना हो, लेकिन अब उसके बाद वो जो वक्त मुकर्ररा पर वापस आने के लिए तैयार
قابل تعریف ہے. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید اس کو کہتے ہیں جسے پروردگار عالم نے ڈبل پروموشن دے کر جلدی پاس کر دیا. ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا لائق طالب علم کہ جن کو وقت مقررہ سے بہت پہلے پروموٹ کر کے کہ یو آر ایکسٹرا بریلینٹ, تم ایکسٹرا جینیس ہو, تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم 16 سال مکمل کرو پھر تمہیں میٹرک کی سند دی جائے, تم اس قابل ہو کر 13-14 سال ہی کے سن میں تمہیں اس قابل ڈکلیئر کر دیا جائے کہ تم آگے جا سکتے ہو. جس طریقے سے وہاں پر ڈبل پروموشن کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, اسی طریقے سے اگر حالات ایسے ہو جائیں تو کسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ شہادت کا تاج سر پہ سجائے اور پروردگار کی طرف سے ڈبل پروموشن حاصل کر لے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس کو بھی ذرا دیکھیے, کسان زحمت برداشت کرتا ہے, کسان محنت کرتا ہے, وہ پسینہ بہا رہا ہے, اس کا پسینہ بہ رہا ہے, وہ زحمت اٹھا رہا ہے, کھیت میں جاتا ہے, کام کرتا ہے. آپ اور فرمائیے برادر نے, یہ جب کھیت میں کام کر رہا ہے تو کیا اس کو رزلٹ فوراً مل رہا ہے؟ اس کو رزلٹ فوراً نہیں مل رہا, مگر یہ ایک اچھے دن کی امید پر یہ ساری محنتیں کر رہا ہے, یہ ساری زحمتیں وہ برداشت کر رہا ہے ایک اچھے دن کی امید پر کہ آج جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا فائدہ مجھے کب حاصل ہوگا؟ کہ جب یہ فصل اگے اس کے بعد اس کا فائدہ مجھے حاصل ہوگا. ابھی تو بظاہر اس کا پسینہ بہ رہا ہے, ابھی تو بظاہر وہ بیج جو اس نے زمین کے اندر ڈال دیے ہیں ان کے اوپر مٹی ڈال کے ان کے اوپر پانی ڈال کے گویا اس نے کیچڑ بنا دی ہے. یعنی ہم جیسا اگر شہر کا رہنے والا ہے جو زراعت کے اصولوں سے واقف نہ ہو تو انصافاً وہ تو دیکھ کے یہ کہے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو اپنا سارا بیج خراب کر رہے ہیں. مگر وہ مسکرا کر کہے گا کہ آپ کو مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں, آپ جس وقت کو دیکھ رہے ہیں میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے غور فرمایا جو ویژنری ہوتا ہے وہ آگے دیکھتا ہے, جو ویژنری ہوتا ہے وہ آگے دیکھتا ہے, وہ فقط حال پر اکتفا نہیں کرتا, وہ آگے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں برادران عزیز, انصافاً مجھے بتائیے کہ اگر کوئی 10 سال آگے دیکھ رہا ہو تو وہ ویژنری ہے, اگر کوئی 20 سال آگے دیکھ رہا ہو تو بڑا ویژنری ہے, اگر کوئی 100 سال آگے دیکھ رہا ہو تو وہ تو لیڈر ہے, ویژنری ہے. ایسا ویژنری لیڈر کہ 100 سال آگے دیکھ رہا ہے, جو 100 سال آگے دیکھے وہ آپ کی نظر میں ویژنری ہے, اور جو دنیا کے آگے آخرت کو دیکھ رہا ہو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ البتہ یہ کون کرے گا؟ جو واقعاً آخرت پر ایمان رکھتا ہو, جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہی ہے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دنیا کو آئسولیشن میں دیکھ رہا ہے, پھر وہ دنیا کو فرسٹ ایپیسوڈ کے طور پر نہیں دیکھ رہا, جس کا کنکلوڈنگ آف ایپیسوڈ پھر آخرت. اگر وہ اس کو نہیں دیکھ رہا اور اس کو آئسولیشن میں دیکھ رہا ہے تو برادران عزیز پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ بابر و عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیز, کہ جتنی عیاشی کرنی ہے کرو, اس لیے کہ کوئی دوسری دنیا نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں. پھر تو بالکل ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یقین جانیے نہ دین سمجھ میں آ سکتا ہے, نہ تقویٰ سمجھ میں آ سکتا ہے, کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے سورہ یونس کے اندر ان الذین رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, یقیناً وہ لوگ کہ جو راضی ہو چکے ہیں دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن بیٹھے, بھائی ان کا دسترخوان رنگین ہو, ان کی اگر بیماری اگر ان کو تنگ کرے تو ان کے صحت کے لیے علاج مہیا ہو, ان کا دسترخوان رنگین ہو, ان کے عیش و عشرت کے سامان فراہم کر دیے جائیں, ان کو کوئی پرابلم نہ ہو, ان کا بہترین گھر ہو, اور اس کے بعد وہ دنیا سے غافل ہیں, وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں, وہ آخرت سے غافل ہیں. پروردگار فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو جاتے ہیں. رضوا بالحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی پر راضی, وَطْمَعَنُّ بِهَا, فقط راضی نہیں ہے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے, ہماری نشانیاں ان آیاتِنا غافلوں, اور پھر اس کے بعد جو ہماری نشانیاں ہیں اس سے بھی غافل ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں. ہاں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں, اعمال صالحہ کو انجام دینے میں زحمت ہے, غریب کی مدد کرنی ہے تو اپنی جیب کا بوجھ ہلکا کرنا پڑے گا کہ میرا دسترخوان رنگین ہے مگر ساتھ ہی ساتھ کسی اور کا چولہا بھی جلے. اگر ایک انسان فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نیند کو قربان تو کرنا پڑے گا, یہ کون کرے گا؟ वो शख्स के जो दुनिया को आइसोलेशन में देख रहा है वो पतन इसके लिए तैयार नहीं होगा। आजादारी कौन करेगा? मैं हुसैन का मातम क्यों करूं अगर मैं दुनिया को आइसोलेशन में देख रहा हूं? लेकिन अगर ये तसव्वुर ज़हन में है कि दुनिया के बाद आखिरत है, ज़हरा को मुंह दिखाना, मैं मंजिल मसाइल से दूर। लेकिन आप और फरमाइए कि ये वो मंजिल होती है कि जहां पर एक इंसान के अंदर एहसास जिम्मेदारी डेवलप होती है। पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम का वो फरमान जो बहुत मशहूर है, इसी फिलोसफी को एक्सप्लेन करता है। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इसका मतलब ये है कि ये खेत है दुनिया कि जहां पर तुम हल चलाओ, बीज बो, फसल उगाने की कोशिश करो, हार्वेस्टिंग करो, थ्रेश आउट करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो तुम्हें कयामत के मैदान में मिलेगी। यही वो चीज है जिसे नहजुल बलागा में मौला कायनात ने एलोबरेट किया, एक्सप्लेन किया। और मौला ये फरमाते हैं, देखिए एक शख्स को सुना, वो दुनिया की बुराई कर रहा था। नहजुल बलागा के अंदर कलिमात खिसाल, मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज कर दूं, पहला हिस्सा नहजुल बलागा का खुतबा, दूसरा हिस्सा मक्तूबा लेटर्स, पहला सरमन दूसरे लेटर्स, और फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा अखबार जर्री जो गोल्डन वन लाइनर जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंदर अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान आपको मिलेगा कि किसी ने दुनिया की बुराई की तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, आई औज़ामुद दुनिया, ऐ दुनिया की मजम्मत करने वाले इंसाफ से बता, तुझे दुनिया की मजम्मत करने का हक है या दुनिया को तेरी मजम्मत करने का हक? दुनिया ने अपना कौन सा मामला तुझसे ढका छुपा रखा? यानी अगर ऐसा होता कि दुनिया ने अपना मामला हिजाब में रखा होता, तुझे न पता होता, तो तू ये कह सकता था कि दुनिया ने तुझे धोखा दिया। मगर दुनिया ने तुझे कब धोखा दिया? दुनिया ने हाल के आईने में तुझे तेरा मुस्तकबिल दिखला दिया। ये मौला की ताबीरात, हाल के आईने में मुस्तकबिल का आईना दिखला दिया। यानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं बरादरान अजीज, धोखा किसको कहते हैं? तो दुनिया धोखा देती, धोखा किसको कहते हैं? अगर किसी ने गड़ा खोदा और उसे खसो खाशा से पाट दिया, उसके ऊपर घास फूस डाल दी और आप वहां से गुजर रहे हैं और आपको नजर नहीं आ रहा कि यहां पर गड्ढा या खड्डा मौजूद है और आप गिर गए, यकीनन ये धोखा दिया गया, ये धोखा दिया गया। जैसे कि इस तरह का इंप्रेशन दिया गया कि जमीन हमवार, जब वहां से गुजरे तो वहां पर तो खसो खाशा थे, हमने पांव रख दिया ये समझते हुए कि हमवार जमीन है, सतह हमवार नहीं थी, हम गिरे और उस गड्ढे के अंदर ट्रैप हो गया, ये धोखा दिया गया। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं बरादरान अज़ीज़, एक शख्स वहां से गुजर रहा है, गड्ढे के ऊपर कोई खसो खाशाक नहीं बल्कि उल्टा वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहां आगे गड्ढा मौजूद है, बराए मेहरबानी देख के चलिए, फिर भी उसके बाद वो शख्स वहां से गुजरे देखते हुए कि यहां पर गड्ढा मौजूद है, फिर भी उसमें अपना पांव डाले और फिर वो गिर जाए और फरियाद करना शुरू करे, अरे किसी ने मुझे धोखा दे दिया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, आप इंसाफ से मुझे बताइए आप क्या कहेंगे कि किसी ने तुम्हें कब धोखा दिया है? तुमने खुद धोखा खाया है, तुमने अपने आप को धोखा दिया, किसी और ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आप कहेंगे ऐसा कौन करता है? मौला फरमाते हैं दुनिया के अंदर हर गाफिल इंसान यही कर रहा है, दुनिया में हर गाफिल इंसान यही कर रहा है। मौला फरमाते हैं दुनिया ने अपना मामला छुपा कर कब रखा? दुनिया ने अपने आप को हिजाब में कब रखा? खसो खाशाक से पाट कर कब रखा? क्या तुम अपनी आंखों से अपने अजदाद की कब्रें नहीं देख रहे? इन कब्रों के आईने में तुम्हें मुस्तकबिल में तुम्हारी कब्र क्यों नजर नहीं आती? और तवज्जो कीजिएगा, यानी या तो ऐसा होना कि आज तक हमने किसी को मरते देखा ही नहीं, तो फिर उसके बाद एक इंसान कहे क्या हो सकता है कि हमें मौत ना आए? लेकिन जबकि ऐसा नहीं, मौला फरमाते हैं वो वक्त था कि जब तुम अपने बीमारों की दवा का इंतजाम करते थे, यही तुम्हें करना चाहिए था, मगर वो वक्त आया कि जब सारे इंतजाम फेल हो गए और तुम्हारा वारिस तुम्हारे सामने जान दे रहा था, तुम अपनी आंखों के सामने उसे दम तोड़ते हुए देख रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसके इलाज के लिए इंतजाम करो, तुमने किया, मगर वाजे हो गया कि अब इसका वक्त पूरा हो गया और इसकी रूह परवास कर गई, तो तुमने इसके जनाजे के आईने में अपना जनाजा क्यों नहीं देखा? दुनिया ने कब छुपा कर रखा? तुम्हारे सामने ऐसे बुजुर्गान मौजूद नहीं है? कि जिनके सर के बाल सफेद हो चुके हैं, यानी वाकई आईने में अगर मैं देखता हूं और मुझे भी अपनी दाढ़ी के चंद बाल सफेद नजर आते हैं, तो ये ऐलान है खुरूज और ऐलान रहील तो है। आप और फरमाइए ब्रदर ने अजीज इंसाफन कि वो जवान जो यहां मौजूद है जिनका कोई एक बाल सफेद नहीं, वो उन बुजुर्गों को देख रहे हैं कि जिनके सर के बाल सफेद हो चुके हैं, वो कि जिनकी कमरें बिल्कुल सीधी हैं, वो ऐसे बुजुर्गान को देख रहे हैं कि जिनकी कमर झुक चुकी है, वो कि जिनके दांत सलामत हैं, वो ऐसे अहबाब को देख रहे हैं कि वो ढंग से खा भी नहीं सकते, जो बिल्कुल सेहतमंद है वो बीमार को देख रहा है। मौला फरमाते हैं कि दुनिया ने अपना मामला कब छुपा कर रखा था, दुनिया ने अपना मामला बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था, इन आईनों में तुम अपनी शक्ल देखना नहीं चाहते, इसका मतलब यह है दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया नहीं है, तुमने अपने आप को धोखा दिया है। आपने बहुत फरमाया ब्रदर अजीज। फिर मौला फरमाते हैं कि दुनिया अगर मस्बत निगाह से देखो तो यही वो दुनिया है कि जो मलाइका के उतरने की जगह है, यही वो दुनिया है कि जो सजदा करने की जगह है। मौला फिर एक तादीर इस्तेमाल करते हैं, मत जरो औलिया इल्ला, ये दुनिया औलिया खुदा की तिजारत की जगह, एक बिजनेस हब है, एक मार्केट प्लेस है, एक ऐसी जगह है कि जहां पर दुकान लगाई जाती है। दुकान क्यों लगाई जाती है? ताकि ताजर कारोबार करे और उस मुनाफे को कयामत के लिए जखीरा कर ले। वो मज़रअतुल आखिरा, वो पैगंबर अकरम की ताबीर, ये मौलाए कायनात की ताबीर, मत जरो औलिया इल्ला, ये दुनिया औलिया खुदा की तिजारत का, ये जब वहां पहुंचेंगे तो दुनिया को बुरा नहीं कहेंगे, दुनिया का शुक्रिया अदा करेंगे कि ये दुनिया थी कि जिसकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी को हमने कैपिटलाइज किया, और जब कैपिटलाइज किया तो उसका नतीजा उस फायदे की सूरत में जाहिर हुआ कि जो जन्नत में नेमतों की सूरत में हमें दिया गया। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ये तवज्जो जो दुनिया के हवाले से अमीरुल मोमिनीन डेवलप करना चाहते हैं, अगर ये डेवलप हो जाए, इसी का दूसरा नाम है तक्वा। अगर कोई शख्स मुझे ये कहे कि तक्वा किस चीज का नाम है, तक्वा उस एहसास से जिम्मेदारी का नाम कि दुनिया में परवरदिगार आलम ने ऐशो इशरत और अय्याशी के लिए नहीं भेजा, परवरदिगार आलम ने किसी जिम्मेदारी की तकमील के लिए इस दुनिया के अंदर हम सबको भेजा है। जो जितना जल्द उस जिम्मेदारी की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा वो उतना बड़ा मुत्तकी है। हाँ, एक जुमला आपके ज़ौक के बहुत करीब होकर अर्ज कर रहा हूं, तो याद रखिएगा, जिसमें तकवा आता है वो मुत्तकी बनता है, और जो मुत्तकी बनता है वो सफ़े मुत्तकीन में आता है, और जो सफ़े मुत्तकीन में आता है उन्हीं के इमाम को इमामुल मुत्तकीन कहा जाता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब मौला सिफीन की जंग से वापस आए, रास्ते में एक कब्रिस्तान नजर आया और मौलाए कायनात ने अपने साथियों समेत कब्रिस्तान के उन मकीनों को मुखातब किया, खिताब अमीरुल मोमिनीन का है। मौला क्या फरमा रहे हैं? नजर बलागा के अंदर ही मौजूद है, कोई कलेमात के साथ के अंदर, और वाकई ये सुनने वाला जुमला। मौला फरमाते हैं, या अहल दयारिल मुहिशा वल महालिल मुगफिरा वल कुबूरिल मुस्लिमा या अहलत तुरबा या अहलत गुरबा या अहलत वाहदा या अहलत बादशाह, ये खिताब अभी मौला ने एड्रेस किया है। या अहलत दयारिल मुहिशा, ऐ ऐसे घरों में रहने वालों के जहां पर कोई उंस नहीं, वल महालिल मुगफिरा, ऐ ऐसे घरों में रहने वालों के जहां पर कोई दूसरा रहने के लिए तैयार नहीं होता, वल कुबूरिल मुस्लिमा, ऐ अंधेरी कब्रों में रहने वालों, या अहलत तुरबा, ऐ खाक नशीनों, या अहलत गुरबा, ऐ गरीबुल वतन अफराद, या अहलत वहदा, ऐ तन्हा रहने वालों, या अहलत वहशा, ऐ वहशत की जिंदगी गुजारने वालों, यहां तक खिताब है। अब उसके बाद मौला फरमाते हैं कि तुम में और हम में इतना फर्क है, और बस इतना ही फर्क है, अंतुम लना फरकुन सागर व नहनु लकुम तबअुन लाहिक, तुम अपने सफर में आगे बढ़ गए हो और हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तुम में और हम में इतना फर्क है, अंतुम लना फरतुन साबिक वनानो लकुम तपहुन लाहिक, तुम अपने सफर में आगे बढ़ गए हो और हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, सुनो यहां की क्या खबर है, ये सुनो, हम तुम्हें यहां की खबर देते हैं। अम्मा दूर हो फकत सुकेना, वो घर जो तुम छोड़कर गए थे वो खाली नहीं है, वो घर जो तुम छोड़कर गए थे वो खाली नहीं है, उनमें दूसरे आकर रहने लगे। अम्मल अजवाज हो फकत नुकेहत, वो जो तुम शरीक के हयात छोड़कर गए थे वो भी अब तन्हा नहीं है, उनके दूसरे निकाह हो चुके। अम्मल अम्वाल हो फकत कुसिमत, और जो माल तुम छोड़कर गए थे वो भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ नहीं है, वो भी तकसीम हो गया। तीन चीजें थी, अम्मल दूर हो फकत सुकेना, जो घर तुम छोड़कर गए थे उनमें दूसरे आकर रहने लगे। अम्मल अजवाज हो, जो शरीक हयात तुम छोड़कर गए थे फकत नुकेहत, वो भी अब तन्हा नहीं है, उनकी दूसरी शादियां हो चुकी हैं। अम्मल अम्वालो, और वो माल जो तुम छोड़कर गए थे फकत कुसिमत, वो तकसीम कर दिया गया। ये तीन चीजें थी, इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया। हादा खबरुमा इंदना, ये तो वो खबर है जो हमारे पास है। फमा खबरुमा इंदकुम, अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या खबर है। खबरें सुनी आपने, देखिए न्यूज चैनल्स के ऊपर खबरें आती है, ये पाकिस्तान की खबर है, ये हिंदुस्तान की खबर है, ये अमेरिका की खबर है, ये रशिया की खबर है, ये सारी खबरें हम सुना करते हैं। कुछ हमारी अपनी खबरें होती हैं, कुछ दूसरों की खबरें होती हैं। मौला फरमाते हैं हादा खबरुमा इंदना, ये वो खबरें हैं जो हमारे पास है। वमा खबरुमा इंदकुम, अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या खबरें हैं। सुम्मल तवादा इला अस्हाबी, उसके बाद मौला ने रुख किया अपने साथियों की तरफ और फरमाया अमा लव ओजेना लहुम फिल कलाम, ये बेचारे तो अभी बोल नहीं सक रहे, लेकिन अगर इन्हें बोलने की इजाजत मिल जाए बहुत तवज्जो कीजिएगा। अमा लव ओजेना लहुम फिल कलाम, ये बेचारे बोल नहीं पा रहे, लेकिन अगर इन्हें बोलने का मौका मिल जाए लाख बरू को तो ये तुम्हें खबर देंगे। इन्ना खैर ज़ाद तक्वा, कि अगर दुनिया से ले जाने की कोई चीज थी तो वो तकवा की दौलत थी और कोई दूसरी चीज नहीं। मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर की, मौला कायनात ने इसमें तीन बातों का तस्करा किया, घर नंबर दो अजवाज और नंबर तीन माल, और फिर उसके बाद कहा कि इनमें से कोई भी फारिग नहीं, ये सब के सब किसी न किसी के यूज में आ चुके हैं, और फिर फरमाया कि अगर इनको बोलने की इजाजत मिल जाए तो अब ये जा चुके हैं ना इस दुनिया से, तो ये तुम्हें बताएंगे कि दुनिया से अगर कोई ले जाने वाली चीज थी तो वो तकवा की दौलत थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मौला क्या समझाना चाह रहे, मेरे नौजवान दोस्त खास तवज्जो करें, मौला क्या समझाना चाह रहे, क्या मौला ये कहना चाह रहे कि दुनिया में रहते हुए तुम्हें घर नहीं बनाना चाहिए, क्या मौला ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में रहते हुए तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए, क्या मौला ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में रहते हुए तुम्हें माल नहीं कमाना चाहिए, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है कि जो मौला कहना चाहते हैं। बरादरान अजीज याद रखिएगा, ना इस्लाम घर बनाने का मुखालिफ है, ना इस्लाम शादी का मुखालिफ है, ना इस्लाम माल कमाने का मुखालिफ है। हलाल से घर बनाइए, इस्लाम को कोई एतराज नहीं, बल्कि इस्लाम तो ताकीद करता है घर बनाओ भी घर बसाओ भी, इस्लाम तो ताकीद करता है, तो ये काबिल मुजम्मत तो नहीं हो सकता। हलाल से अगर कोई घर बना रहा है इस्लाम को कोई एतराज नहीं, हलाल से कोई घर बसा रहा है इस्लाम को कोई एतराज नहीं, हलाल से कोई माल कमा रहा है इस्लाम को कोई एतराज नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हमने बना लिया, हमने घर बसा लिया, हमने माल कमाना, अब उसके बाद इंतकाल हो गया तो अब क्या होना चाहिए, वरसा क्या करें। मौला के इस फरमान को देखने के बाद, अरे मौला कह रहे कि देखो वरसा ने माल तकसीम कर लिया, दूसरे आकर इस घर में रहने लगे, तो मौला क्या समझाना चाहते हैं। मौला ये कहना चाहते हैं कि अरे बेशर्मों, वो मरने वाला मर गया और तुम पीछे माल तकसीम कर रहे, तुम उनके घरों के अंदर रहना शुरू कर देते हो, और अगर किसी की कोई शरीर की आयात है तो फिर उसे दूसरे निकाह का कोई हक नहीं। मौला क्या कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, ये मैं आपसे चाहता हूं कि इस पर गौर कीजिए। क्या मौला ये कहना चाहते हैं कि अव्वल तो मकान बनना नहीं चाहिए था, बन गया तो मरने वाले के मकान में दूसरों को रहना नहीं चाहिए। अव्वल तो माल कमाना नहीं चाहिए था, अगर कमा लिया तो उसे नसीब नहीं होना चाहिए था। अव्वल तो शादी करनी नहीं चाहिए थी, और अगर कर ली तो अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बेवा को दूसरी शादी का हक नहीं, इज्जत के बाद भी हक नहीं। और बरात अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो फिर शौहर को दूसरे निकाह का हक नहीं, बस वो पहली बीवी की याद में ही मगन रहे। इस्लाम कहना क्या चाहता है, जबकि हमारे सामने बिल्कुल वाज़े दीन का पैगाम मौजूद है, हलाल से माल बनाओ, हलाल से घर बनाओ, हलाल से घर बसाओ, इस्लाम को इतराज नहीं। इंतकाल हो गया, अब शरीयत क्या कहती है? आप कौज़ुल मसाइल उठाइए और किताब मीरास पढ़िए, पहला गुरु अगर ये ना हो तो दूसरा गुरु, अगर ये ना हो तो तीसरा गुरु। मरने वाले का माल इस तरतीब से तकसीम होगा, अगर पहले गुरु के अंदर एक भी फर्द मौजूद है माँ बाप और औलाद तो दूसरे गुरु की बारी नहीं आएगी, दूसरे गुरु का एक भी फर्द मौजूद है तो तीसरे गुरु की बारी नहीं आएगी। तो ये क्या है, इसकी तो मौला मुजम्मत कर रहे। मौला तो फरमा रहे थे देखो तुम गए इस दुनिया से और वो तुम्हारे घर में आकर रहने लगे, तुम्हारा माल तकसीम हो गया, उन्होंने दूसरी शादियां कर ली। ऐ मौला आप कहना क्या चाहते हैं ये समझाइए। तो हमारे पास कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा के अंदर वो आयतें मौजूद हैं जो मीरास की तकसीम की ताकीद करती हैं और बताती हैं कि मीरास इस तरह से तकसीम होनी चाहिए। और फिर परवरदिगार कहते हैं खबरदार इसकी खिलाफ वर्जी मत करना, वरना तुम हुदूद खुदा पर तजावुज कर रहे हो, ट्रांसग्रेस कर रहे हो। अरे हमें कोई समझाए तो सही कि एक तरफ मौला कायनात मुजम्मत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाम ये कह रहा है, खुद मौला के दूसरे फरामीन को हम देखते हैं तो यही सारी चीजें नजर आती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए खुद मौला कायनात का घर था या नहीं था, क्या मौला ने घर बनाया या नहीं बनाया? जवाब बनाया। क्या मौला ने घर बसाया या नहीं बसाया? अरे ऐसा घर बसाया, ऐसा कोई दूसरा घर नहीं हो सकता। क्या मौला ने माल कमाया? बिल्कुल नहीं कमाया, कमा के खर्च कर दिया दूसरों पर, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि मौला ने नहीं कमाया, आपकी गलतफहमी है। वसाइल शिया हमारी हदीस की वो किताब जो दरसे खारिज का मौजू होता है, वसाइल शिया के अंदर आपको ये हदीस मिलेगी कि मौला कायनात ने 400 गुलाम आजाद किए। नहीं, इतना जुमला थोड़ी इस मतलब को वाज़े करेगा। 400 गुलाम आजाद करने के लिए माल चाहिए। हो सकता है कि आप ये कहें कि मौला के किसी मालदार दोस्त ने कोई अतिया कर दिया होगा, कोई हदिया दे दिया होगा। नहीं बरादरान अज़ीज़, वज़ाहत मौजूद है कि 400 गुलाम मौला ने वो आजाद किए कि जिनके लिए माल सर्फ हुआ और वो माल मौला ने अपने कुव्वत बाज़ू से कमाया। अजीब बात नहीं, एक तरफ मौला कह रहे हैं वो घर उसमें दूसरे आकर रहने लगे, वो अजवाज उनकी दूसरी शादियां होंगे, वो माल को तकसीम हो गया। मौला यही तो होना चाहिए, मौला कहेंगे मैं भी यही कह रहा हूं कि यही होना चाहिए था, यही हुआ। मैं उन साकिनान कब्र को यही समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे घर बनाने पर मुझे कोई एतराज नहीं था, तुम्हारे घर बसाने पर भी हमें कोई एतराज नहीं था, तुम्हारे शादी करने पर भी हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन अगर तुम ये समझ रहे थे कि जो घर तुमने बनाया है वो तुम्हारे साथ जाएगा, यू वर रॉन्ग, तुम चले गए घर रह गया। अगर तुम ये समझ रहे थे कि तुम्हारा माल तुम्हारे साथ जाएगा, देख लो तुम चले गए माल रह गया, यही होना चाहिए था, यही हुआ। जो तुम्हारे शरीर के हयात थे, अगर तुम ये समझ रहे थे कि वो तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम गलत थे, तुम चले गए वो रह गए, यही होना चाहिए था, यही हुआ। खबर इसी बात की दी जा रही है कि देख लो तुम अकेले गए, ना तुम्हारा माल तुम्हारे साथ गया, ना तुम्हारा मकान तुम्हारे साथ गया, ना तुम्हारे अजवाज तुम्हारे साथ गए, इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं गया, तो साथ कौन जा सकता है? मौला फरमाते हैं अब अगर तुम इनसे पूछो तो तुम्हें यह खबर देंगे कि अगर कोई चीज साथ जा सकती थी तो दौलत तकवा, तकवा के सिवा और कोई चीज साथ नहीं जा सकती थी। तो हम मौला क्या करें, मकान ना बनाए तो बनाओ, मकान तो फिर भी रह जाएगा, मगर मकान ऐसा बनाओ कि चाहे वो यहां पर रह जाए मगर तुम्हारी तकवा की दौलत में इजाफा कर दे। क्या मौला हम शादी ना करेगा, शादी करो मगर शादी उससे करो कि जो तुम्हारे तकवा की दौलत में इजाफे का मुकदमा बन जाए। क्या मौला हम माल ना कमाए, कमाओ मगर माल ऐसा कमाओ कि जिसके नतीजे में तुम्हारी तकवा की दौलत में इजाफा हो जाए। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए बरादरान अजीज, ये तकरीर का आखिरी हिस्सा है, एक मरतबा दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। और मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ी सी और तशरीह हो जाए ताकि मंजिल मसाइब तक पहुंचने में हमारे लिए आसानी। ये तीनों चीजें आपके लिबास है, ये तीनों चीजें आम तौर पर टारगेट हो, घर बनाना, घर बसाना जिसमें शादी भी है औलाद भी है, माल कमाना ताकि मुस्तकबिल महफूज हो जाए, दुनिया का जो भी महदूद मुस्तकबिल है वो महफूज हो जाए। मौला फरमाते हैं कि तीनों चीजें तुम करो मगर इस ढंग से, इस ढब से कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए तकबे का मुकदमा बन जाए, तुम्हारा माल तकवे का बाइस बन जाए, तुम्हारा शरीक हयात तुम्हारे लिए तकवे का बाइस बन जाए। ये तीनों चीजें तुम्हारे पास हों मगर तकवे का मुकदमा बन करो। फिर हम कहें मौला के लिए हमारे साथ जाएंगे, साथ फिर भी नहीं जाएंगे मगर वो तकवा तुम्हारे साथ जाएगा जो इनके जरिए से हासिल हुआ है। घर के बारे में आइए, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसके मुकदमे में ये हदीस के खास सियाक और सिबाक के साथ उन्होंने नकल की। छठे इमाम क्या फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं खबरदार अपने घरों को यहूदियों की तरह कब्रिस्तान मत बनाओ। तकवा, घर और तकवा। छठे इमाम फरमाते हैं अपने घरों को यहूदियों की तरह कब्रिस्तान मत बनाओ। अरे क्या मतलब है, यहूदियों का घर कब्रिस्तान होता है क्या होता है आज का मुझे नहीं मालूम। यानी इमाम जब कह रहे थे मुमकिन है उस मौके पर ये रवेश यहूद की रही हो, तो वजह क्या थी, ये कह रहे हैं कि वजह ये थी कि यहूद की सारी इबादतें सिनेगॉग में, जो इबादत होगी वो अपनी इबादतगाह में करेंगे, घर पे नहीं करेंगे। इसका कब्रिस्तान से क्या ताल्लुक है, कि जिस तरीके से एक मुर्दा कब्र में गया तो अब उसका नामा अमल तो बंद हो गया ना, तो ईसा अलैहि सवाब हो सकता है या कोई सदका जारिया उसने किया था वो हो सकता है, मगर कोई नई नमाज तो वो नहीं पढ़ सकता, कोई नई अज़ादारी तो वो नहीं कर सकता, कोई नया रोजा तो वो नहीं रख सकता। और फरमाया जिस तरीके से कब्र में जाने के बाद एक शख्स का नामा अमल बंद हो जाता, कि यहूद का तरीकेकार ये था कि जो इबादत करनी है वो सिनेगॉग इबादतगाह बस, जैसे ही वहां से बाहर आए और अपने घर के अंदर गए अब इबादत का कोई काम घर में नहीं होगा। जिस तरह से कब्र में जाने के बाद मुर्दा मजीद कोई इबादत नहीं कर सकता, वो घर में जाने के बाद कोई इबादत नहीं कर सकते। छठे इमाम फरमाते हैं खबरदार अपने घरों को यहूद की तरह कब्रिस्तान मत बनाओ। यानी इबादतें तुम्हारी मस्जिद और इमाम बाड़े में भी होनी चाहिए, कुछ इबादतें तुम्हारी तुम्हारे घर के अंदर भी होनी चाहिए। और फरमाइएगा ब्रदरान अजीज, अच्छा अशफाक अहमद साहब मशहूर ड्रामा निगार नावल निगार इंतकाल फरमा गए, तसव्वुफ की तरफ काफी माहिर थे, उनका एक मरतबा टीवी पर एक डिस्कशन एक मुजाकरा आ रहा, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ घर के हवाले से। वो फरमाने लगे तमसील एक तसव्वुराती मुकालमा, वो कहने लगे कि भाई हम रोज मस्जिद जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, फजर की नमाज पढ़ी फिर दोहर की नमाज पढ़ने के लिए गए, जाहिर उनके मसलक के अतबार से असर के लिए अलग गए, फिर मगरिब के लिए फिर इशा के लिए, तो रोज हम अल्लाह के घर नमाज पढ़ने जाते थे तवज्जो की देर पर। तो एक दिन जब हम फजर के बाद मस्जिद से बाहर आने लगे तो अल्लाह मियां ने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमारा दामन थाम लिया और कहा कि रोज तुम आते हो तो चले जाते हो आज मुझे भी अपने साथ अपने घर ले चलो, आज हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। तो हमने कहा कि नहीं परवरदिगार, तू अपने घर में रह, हम आएंगे, भी जोहर का वक्त होगा तो हम वापस आएंगे, मगर तू अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, हमारे घर में एंटर होने की कोशिश मत कर। वो जो इबादत करनी है वो यहां पर आकर हम करेंगे, तुझसे मुलाकात कर लेंगे, गाये बगाए आते रहेंगे, पांच वक्त तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये क्या बात, मुलाकात तो यहीं पर होगी, हमारे घर आने की कोशिश मत करना। वो खुदा इसरार कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, और हम कह रहे हैं कि नहीं परवरदिगार, वहां पर हमने ऐसा माहौल नहीं रखा है कि तुझे मेहमान बना सके। आपने और फरमाया ब्रदर ने जी, ना वहां पर तस्वीरें ऐसी हैं, ना वहां पर टीवी का मामला ऐसा है, ना वहां पर हमारे इंटरनेट का मामला ऐसा है, ना वहां पर हमारे मैगजीन का मामला ऐसा है, ना वहां पर जो माहौल हमने रखा है वो ऐसा है कि हम तुझे वहां पर ले जा सके। तो आपने और फरमाया कि जब यहूद की तरह घर कब्रिस्तान बन जाते हैं तो इबादतें मस्जिद और इमाम बारगाह तक महदूद हो जाती हैं। इंसान अल्लाह को अपने घर में आने की दावत नहीं दे सकता, इमाम जमाना को अपना मेहमान नहीं बना सकता। लेकिन घर भी अगर साथ साथ इस काबिल हो तो फिर खुदा के बारे में तो ये तसव्वुर है, मगर जमाने के इमाम के बारे में तो हकीकत है कि घर ऐसा तो हो कि जमाने के इमाम को मेहमान बनाया जा सके। अब आप देखिए उलमाए किराम से पूछिएगा, वाजिब नमाजें जिस तरह से अज़ादारी का मामला, यकीन जानिए जो हमारे बुजुर्गान ने ये रस्म रखी बहुत सोच समझ कर रखी, घर की मजलिस के एक मजलिस है जो इमाम बाड़े में हो रही, मगर सिर्फ इमाम बाड़े ही में मजलिस होगी, जितने मोमिनीन हैं उनके घर में भी मजलिस होनी चाहिए, क्या इसी एहतमाम के साथ? नहीं, कोई जरूरी नहीं, अगर गुंजाइश नहीं है तो कोई जरूरी नहीं, मगर इतना तो हो कि आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ जाइए, आपका अपना बच्चा जो है वो मेंबर पर जाए, कुर्सी को मेंबर बनाइए, आप नीचे बैठ जाइए, आप सामने बने, वो जाकिर बने, और वो कुछ तो बोले कि जिससे उसे अंदाजा हो कि ये जिक्र की सआदत उसे मिल रही है, समाज की सआदत आपको मिल रही है। यकीन जानिए बरादर ने अजीज, ये जो हमारे बुजुर्गों ने रस्म लाई शबे जुमा मजलिस एक इनफॉर्मल वे के अंदर, पर घर के अंदर ही सही, अगर इमाम बाड़े नहीं आ सकते कोई बात, अपने घरों के अंदर, मगर एक माहौल बना, माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा, बच्चे पढ़, कभी माँ पढ़ रही कभी बाप पढ़, तो कोई तकल्लुफ नहीं है। जब वो नोहा पढ़े तो आप तवक्को ना करें कि पहले दिन वो नदीम सरवर साहब के अंदाज में पढ़े, ऐसा नहीं, तरबियत इसी चीज का नाम कि माहौल ऐसा बनाइए कि जहां पर वो इस तरफ खुद से रागिब हो जाए। अगर ये रागिब हो गया तो नतीजा क्या निकलेगा, आप चले जाएंगे इस दुनिया से, ये रह जाएगा, मगर इसकी तरबियत से हासिल होने वाला तकवा आपके साथ साथ आपकी कब्र में जाएगा। आपने गौर फरमाया ब्रदर ने अजीज, मस्जिद वाजिब नमाज, उलमाए किराम से आप पूछिएगा, वाजिब नमाज मस्जिद में पढ़ने का सवाब ज्यादा है, मुस्तहब नमाज मस्जिद में पढ़ने का सवाब ज्यादा नहीं है, घर में पढ़ने का सवाब ज्यादा। नमाज इशा अगर आप मस्जिद में पढ़े इतना सवाब नहीं, नमाज इशा अगर आप घर में पढ़े सवाब ज्यादा। क्यों? ये मुस्तहब नमाज, नमाज नाफिला का जितना मुस्तहब नमाजों को इंसान घर में पढ़े सवाब ज्यादा है। वजह क्या है? एक तो सवाब मिलेगा वो तो अपनी जगह पर, मगर फराजान हजीज इसका एक नतीजा है कि जब आप मुसल्ला बिछाएंगे और उस पर खड़े होंगे तो आपका छोटा बच्चा आपको देखकर आपके बराबर में आकर खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। जब आप सजदा करेंगे वो भी सजदा करेगा, जब आप वुजू करेंगे वो भी वुजू करेगा, उसका वुजू आपके जैसा परफेक्ट नहीं होगा, मगर उस मौके पर उसको डांटने की जरूरत नहीं है, उस मौके पर मुस्कुराने की जरूरत है, उस मौके पर पीठ थपथपाने की जरूरत है कि आज अगर आपको देखकर नाकिस वुजू कर रहा है तो कल आपसे बेहतर वुजू करना सीख जाएगा, अगर आज आपको देखकर वो सजदे में जा रहा है कोशिश कर रहा है, उसको नहीं मालूम है कि मुसल्ला क्या होता है, उसे नहीं मालूम सजदा का क्या है, लेकिन अगर वो आपको देखकर आज सजदे में जा रहा है तो कल वो दिन आएगा कि वो आपसे बेहतर नमाजी भी बनेगा, आपसे बेहतर मातमी भी बनेगा। ये माहौल अगर घर में बन जाए تو یقین جاننے کے باہر وہ سارے فساد ہمیں نظر نہ آئے کہ نمازی ہے اور یہ ماتمی ہے. جب ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ماتم کرتے ہوئے بھی دیکھا تو وہ ایک ہی وقت میں نمازی بھی ہوگا اور حسین کا ماتمی بھی ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ جو بھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ آپ کو دیکھ کر آئے گا اور امیٹیٹ کرے گا, یہی بچوں کا انداز ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے جو ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مولا کے الفاظ ایک لقب ہے کرم اللہ وجہہ, جو ہمارے برادران کو بہت پسند ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. کرم اللہ وجہہ یعنی دیگر صحابہ سے بھی ممتاز کرنے کے لیے وہ مولا کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ, علی جس کے چہرے پر اللہ کا خاص کرم تھا. یہ لقب کیوں دیا گیا مولا کو؟ تو کہا گیا کہ جناب دیکھیے سب نے بتوں کے آگے سجدہ کیا, علی وہ ہے کہ جس کی پیشانی کسی بت کے آگے جھکی نہیں ہے. ہم نے کہا بہت خوب, یہ تو آپ نے بہت زبردست بات کی, تو علی کی پیشانی کبھی نہیں جھکی بت کے سامنے؟ کہا کبھی نہیں جھکی. کہا جوانی کی بات نہیں کر رہا, مجھے بچپن کا بتائیے. کہا بچپن میں بھی نہیں جھکی, علی نے بچپن میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. تو اب میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کا اپنا مشاہدہ ہے کہ اگر ماں باپ خدا کو سجدہ کریں تو بچے بھی خدا کو سجدہ کرنے لگتے ہیں, ماں باپ اگر مورتی کو سجدہ کریں تو بچے مورتی کو سجدہ کرنے لگتے ہیں. آپ کا یہ اعلان کرنا کہ کرم اللہ ہو وجہہ, اللہ کا کرم خاص ہے علی کے چہرے پر, یہ علی کے موافق ہونے جناب خاتون جنت کے ساتھ سیدہ عالم کے ساتھ, اس کے بعد पैगंबर अकरम ने एक सवाल किया, आम तौर पर कोई खुसर अपने दामाद से सवाल नहीं कर सकता, लेकिन यकीन जानिए कि जब खुसर मंजिले रिसालत पर हो और दामाद मंजिले इमामत पर, तो ये सवाल भी सचता है और ये जवाब भी सूट करता है। पैगंबर अकरम सवाल करते हैं, या अली कैफ वजदत फातिमा, अली ये बताओ कि तुमने फातिमा को कैसा पाया, कैफ वजदत फातिमा, तुमने सैयदा को कैसा पाया। मौला का जवाब सुनिए, मौला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल निहमल औनु लिल इबादा, मैंने ज़हरा को इबादत के लिए बेहतरीन मददगार पाया। बीवी हो तो ऐसी कि जो इबादत के लिए मुआविन और मददगार बन जाए। बरादरान अजीज, मैं करना चाह रहा था आपकी खिदमत में कुछ और तफासिल, मगर अब जमाने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, 5-7 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात को मुकम्मल करना है। आज खासतौर पर जिस शहीद का तस्करा हमें करना, जनाब उमर का तो तस्करा करना ही है, मगर एक और शहीद जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन, मैं आमतौर पर जनाब हुर का जब बयान होता है तो जनाब ज़ुहैर का भी तस्करा करता हूँ। ये हमेशा याद रखिएगा कि कर्बला में जनाब हुर की एक खास हैसियत थी जिसकी वजह से उनका जिक्र नुमाया हुआ और होना भी चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ज़ुहैर इब्न कैन काना युआदु उस्मानियन, जनाब ज़ुहैर को मुखालिफ तसव्वुर किया जाता था। ये ज़ुहैर इब्न कैन सौजा तकवा का मुकदमा रखिएगा, ये ज़ुहैर इब्न कैन इमाम 28 रजब को मदीने से चले हैं, ज़ुहैर साथ में नहीं, इमाम 3 शाबान को मक्का पहुंच गए हैं, इमाम हुसैन मक्का में आ गए, ज़ुहैर इब्न कैन भी मक्का में आ गए, मगर ज़ुहैर इब्न कैन इमाम हुसैन से मुलाकात के भी रवादार नहीं। वो ज़ुहैर इब्न कैन जो बाप में शहीद कर्बला करार पाए, वो हुसैन से मुलाकात नहीं करना चाहते थे। इमाम हुसैन ने हज को उम्रे से तब्दील किया, 8 ज़िलहज को निकल गए, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने हज मुकम्मल किया, इमाम हुसैन के साथ मक्का से नहीं निकले, हज कर लिया, हज 5 दिनों का नाम है, 9, 10, 11, 12 मैक्सिमम 13, ये 4-5 दिन कि जिसमें हज मुकम्मल हो जाता है। ज़ुहैर इब्न कैन ने हज कर लिया, ज़ुहैर की फैमिली है, चंद दोस्त हैं ये जो ज़ुहैर के साथ हैं, इनका सफर तेजी के साथ हो रहा है। इमाम हुसैन के साथ काफिला, वो काफिला हजारों पर मुश्तमिल ना हो लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद, लिहाजा इमाम का सफर मुख्तसर वक्फे के साथ हो रहा है। स्टेशन करना पड़ता है, पड़ाव डालना पड़ता है, मंजिलें मुकर्रर हैं कि जहां पर ये काफिला ठहराया जाएगा, जिस तरह से आमतौर पर काफिलों के साथ होता है उसी तरीके से इमाम हुसैन का काफिला मुख्तलिफ जगहों पर ठहरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ज़ुहैर इब्न कैन का काफिला भी ठहरता है मगर निस्बतन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया कि इमाम हुसैन का काफिला और ज़ुहैर का काफिला साथ साथ हो गया। ज़ुहैर को पता चला कि जहां पर मैं पड़ाव डालना चाह रहा हूँ वहीं पर हुसैन इब्न अली का काफिला भी ठहरा हुआ है। ज़ुहैर कहते हैं कि यहां पर हमें नहीं ठहरना, हम अगली मंजिल की तरफ जाएंगे, ऐसा ना हो कि हुसैन से मुलाकात हो जाए। ज़ुहैर की पॉलिसी क्या है? ज़ुहैर की पॉलिसी यह है कि ना हुसैन का साथ देना चाहते हैं, ना हुसैन से लड़ना चाहते हैं, ना यजीद का साथ देना चाहते हैं, ना यजीद से लड़ना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हक और बातिल के इस मार्के में न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ज़ुहैर आगे बढ़ गए, पता चला कि यहां पर इमाम हुसैन का काफिला नहीं है, क्या यहां पर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद पता चले कि इमाम हुसैन ने अपना काफिला यहीं पर ठहराया हुआ है, ताकि यहां पर हमें नहीं ठहरना, हम अगली मंजिल की तरफ जाएंगे। यहां तक कि एक ऐसी मंजिल आ गई कि अगर यहां पर पड़ाव न डालें तो अगली मंजिल बहुत फासले पर है, बहुत दूर है। यार ज़ुहैर ने कहा कि अब तो मजबूरी है, मालूम करो हुसैन तो नहीं है यहां पर, ताकि हाँ हुसैन इब्न अली ने भी अपना काफिला यहीं पर ठहराया हुआ है। ज़ुहैर कहते हैं कि अब मजबूरी है तो यहीं पर ठहरना पड़ेगा, खेमे लगा दिए गए, ज़ुहैर के दोस्त अहबाब वो अपने अपने खेमों में चले गए और ज़ुहैर इब्न कैन अपने मखसूस खेमे के अंदर अपनी ज़ौजा के साथ खाना खा रहे थे, हाथ में निवाला था, खेमे के पर्दे पर किसी ने दस्तक दी, सदा लगाई कि मैं हुसैन इब्ने अली फर्जंद रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ ज़ुहैर इब्ने कैन के लिए। ज़ुहैर के हाथ में जो निवाला था वो गिर गया। ज़ुहैर को निवाला अपने मुंह लबों तक हलक तक नहीं ले जा सके। अरे यही तो वो चीज थी कि जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। उन्हें मालूम है कि हुसैन इब्ने अली का पैगाम है तो शायद मुलाकात का पैगाम होगा। सौजा हिजाब में थी, कासिद से के अंदर अब कासिद आया और उस कासिद ने कहा कि फर्जंद रसूल का पैगाम है, वो तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। ज़ुहैर इब्ने कैन कोई जवाब नहीं देते उस मौके पर, कोई जवाब नहीं, खामोश रहते हैं। यहां तक कि वो ज़ौजा कहती है कि अरे फर्जंद रसूल तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर सुनो तो सही कि वो कहना क्या चाहते हैं। अजीजान, ऐसी ज़ौजा हो तो तक़वा का मुकदमा फराहम होता है, वरना ज़ुहैर इब्ने कैन करबला के चौदह में शायद शामिल भी ना होते। जाकर सुनो तो सही, फर्जंद रसूल तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जवाब भी नहीं दोगे। ये बातें हो रही थी, ऐसे में उस कासिद ने आकर कहा कि मेरे लिए कोई पैगाम है, मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूं। ज़ुहैर ने कहा कि नहीं, आप चलें, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, फर्जंद रसूल ने बुलाया है तो मैं मुलाकात तो जरूर करूंगा। ज़ुहैर इब्ने कैन बैठे इमाम हुसैन के खेमे में, मुलाकात की और जब पलट कर वापस आए तो अपने सारे साथियों को जमा किया। अब ये वो ज़ुहैर इब्ने कैन नहीं थे, चेहरे पर एक अजीब नूर है, एक चेहरे पर अजीब चमक है, एक अजीब रोशनी है। ज़ुहैर इब्ने कैन के चेहरे पर मुस्कुराहट हुई, अपने तमाम साथियों को मुखातब किया और ये कहा कि भाई मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं फर्जंद रसूल का साथ देते हुए जाम शहादत नोश करूंगा। तारीख में नहीं है, कम से कम मुझे नहीं मिला कि इमाम हुसैन के साथ ज़ुहैर की क्या गुफ्तगू हुई, मगर ये फैसले नजर कि हुसैन इब्ने अली ने बात की और ज़ुहैर मुनकलिब हो गए और कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फर्जंद रसूल के साथ अपनी जान कुर्बान करूंगा। तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहे बिस्मिल्लाह, वरना तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब एक जुमला कहा ज़ुहैर इब्ने कैन ने, वो बड़ा अजीब था। ज़ुहैर कहने लगे, अरे मैंने तो ये भी नहीं पहचाना कि फर्जंद रसूल ने मुझे कितनी इज्जत दे दी, वो कासिद कौन था। मुझे बुलाने के लिए फर्जंद रसूल किसी आम शख्स को भी भेज सकते थे, मगर हाय फर्जंद रसूल ने मेरी कितनी इज्जत बढ़ा दी, मुझे बुलाने के लिए किसी और को नहीं, अपने फर्जंद शबीह पैगंबर अली अकबर को भेज दिया। और बाद में हुसैनी बने, ऐसे और भी बहुत सारे अफराद हैं कि जिन्होंने करबला पहुंचने के बाद, ये तो करबला पहुंचने से बहुत पहले हुसैनी बन चुके थे, हुर से बहुत पहले हुसैनी बन चुके थे, हुर ने जब रास्ता रोका है तो ज़ुहैर इब्न कैन हुसैनी बन चुके थे। मगर अब आइए जरा हुर के बारे में सुनिए, हुर का भी अजीब मामला है। हुर, क्या दिल में कहीं किसी कोशे में मोहब्बत अहले बैत मौजूद है? जवाब, जी हाँ बिल्कुल। मगर क्या वो इतनी पुख्ता है कि उसके बाद यजीद से फासला इख्तियार किया जा सके? जवाब, जी नहीं। कहती है, कोई कि कुछ ऐसा मामला हो जाए कि रहमान भी राजी हो जाए और शैतान से भी बिगाड़ना ना पड़े, यही पॉलिसी जनाबे हुर की थी। आप गौर कीजिएगा, रास्ते में जनाबे हुर ने जब रास्ता रोका है, नमाज का वक्त आया है, तो इमाम हुसैन ने नमाज की तैयारी की है और हुर से कहा, अगर तुम चाहो तो अपने लश्कर के साथ अलग नमाज पढ़ो। कहा कि नहीं फर्जंद रसूल, नमाज तो आपके पीछे ही पढ़े, नमाज तो आपके पीछे ही पढ़े, रास्ता रोका है मगर नमाज आपके पीछे पढ़े। तो कहीं ना कहीं कोई रमक मौजूद तो है, कहीं ना कहीं कोई चिंगारी मौजूद तो है, मगर वो शोला कब बनती है? मैं आपसे कैसे अर्ज करूं, जब हुर ने इमाम हुसैन का रास्ता रोका और वो वक्त आ गया कि अब मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तो आप जानते हैं कि हुर ने आगे बढ़कर इमाम की लजाम फर्श पर हाथ डाला और कहा, फर्जंद रसूल यहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इमाम हुसैन ने क्या कहा था, सकलत का उम का या होर एहोर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे मुजम्मत के लिए बहुत सख्त जुमला होता है अरबी अदब के अंदर बहुत सख्त जुमला तेरी माँ तेरे मातम में बैठे होर ने क्या होर का जुमला बता रहा है कि होर के दिल पे कहीं ना कहीं मोहब्बत अहले बैत मौजूद है होर कहता है फजल ने रसूल आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया कोई और होता तो शायद मैं टिट फॉर टैट इसी तरह से जवाब देता मगर फजल ने रसूल आपकी माँ तो वो है कि जिसका नाम मैं बगैर वजू के अपनी जबान से अदा भी नहीं कर सकता मेरी तो ये मजाल नहीं है मेरी तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं सैयदा के आलम का नाम भी लूं अजीजान होर का जब काफिला इमाम हुसैन से मुलाकात कर रहा था आप जानते हैं सब के सब प्यासे थे मरने के करीब थे और इमाम हुसैन ने वो सारा पानी उनको पिला दिया सबको ये किरदार की अजमत और किरदार की बुलंदी है अगर फजल-ए- रसूल ने वो सारा पानी अपने स्टॉक में रखा होता तो आप जानते हैं कि प्यास काफी मुअख्खर हो सकती थी हुसैन इब्न अली देख रहे थे कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है मगर उसके बावजूद मैं इन सबको सहराब करो सिर्फ इन सिपाहियों को नहीं इनके जानवरों को भी सहराब करो इनके घोड़ों को भी सहराब करो इन जानवरों का क्या कसूर है इन सबको पानी पिलाया गया पानी पिलाया गया और फिर उसके बाद कर्बला में दो मुहर्रम को जब पहुंचे हैं तीन चार पाँच छः यहाँ तक के सांत को पानी बंद कर दिया गया आशूर का दिन आ गया अब आप मुझे बताइए होर के दिल से कोई पूछे उसके दिल पर क्या बीत रही है जब वो हुसैनी खेमों से बच्चों की अलअतश की सदाएं सुनता है सकीना पुकार रही है हाय में प्यास से मरी जा रही बच्चों की सदाएं अलअतश आ रही है हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही है किसी को मालूम नहीं है मगर ये मामला उस वक्त खुला के जब आशूर का दिन आया और हुर ने फैसला किया कि अब मैं इस जालिम काफिले के साथ मजीद नहीं रह सकता एक मरतबा वो आया उमर साद के पास और आकर ये कहा कि उमर साद क्या वाकई जंग होगी कहा कि ऐसी जंग होगी कि जिसके नतीजे में सर कट कट के गिरते हुए नजर आएंगे हुर ने कहा कि क्या सुलह की कोई सूरत नहीं हो सकती कहा कि मैं क्या कहूँ अमीर नहीं मानता ये जमीर की शिकस्त का ऐलान है उमर साद की तरफ से कि अमीर नहीं मानता होर इब्ने जैदी ने रिहाई उस पर कुछ नहीं कहते बाद उलमा ये फरमाते हैं अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी खास तौर पर इसको हाईलाइट करते हैं कि होर ने किसी से तस्करा किया कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं जाऊँगा हुसैन इब्ने अली की तरफ तो उस मौके पर किसी ने कहा तुझे मालूम है तू कितना बड़ा गुनहगार है ना यजीद तुझे माफ करेगा और ना हुसैन तुझे माफ करेंगे अगर तू चला गया तो यजीद माफ नहीं करेगा और अगर वहां गया माफी मांगने के लिए तो इतना बड़ा मुजरिम हुसैन तुझे माफ करेंगे यजीद ने कहा कि बहरहाल मैं हुसैन के पास जरूर जाऊंगा ये करीम इब्न करीम है ये अली ज़हरा का बेटा है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का वारिस है अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब के अल्फाज में मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि होर ने काम किया घोड़े पर नहीं आए पैदल आए और पैदल आए और जैसे जैसे सामने वालों का काफिला हुसैनी काफिला नजर आ रहा है खेमे नजर आ रहे हैं एक काम किया अपने हाथों को अपने रुमाल से बांधा वहां से जब देखा हजरत अबुल फजल अब्बास ने हबीब इब्ने मजाहिर ने कोई आ रहा है तो गुमान हुआ कि कहीं हमला करने तो नहीं आ रहा सब अपने घोड़ों पर बैठे और आगे बढ़े इमाम हुसैन खुद घोड़े पर थे और आगे बढ़ रहे थे कहा कि नहीं अब्बास आहिस्ता हबीब इब्ने मजाहिर आहिस्ता कोई इकदाम ना करे मेरा मेहमान आ रहा है जनाब होर अपने हाथों को बांध कर ये बहुत मुश्किल काम है अपने हाथों से खुद अपने हाथों को बांधना मगर अपने हाथों को बांधा और दूर से कहा अख्ता तो अपना रसूलुल्लाह ऐ रहमतुल लिल आलमीन के फर्जंद दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार आपकी बारगाह में आ रहा है करीब आए और आकर अपने आप को हुसैन के कदमों में गिरा दिया हुसैन के पैरों को हाथ लगाया और कहा अख्ता तो अपना रसूलुल्लाह फर्जंद रसूल बहुत बड़ी खता हो गई बहुत ही बड़ी खता हो गई क्या मुझ गुनहगार की तौबा माफ कबूल हो सकती है क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है हुसैन ने जवाब किया दिया ऐ मेरे भाई होर मैंने तुझे माफ किया मेरे खुदा ने भी तुझे माफ किया अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी कहते हैं कि जैसे ही हुसैन ने कहा भाई भाई कह दिया वो दूसरे जितने साथी घोड़ों पर थे उन्होंने कहा हमसे तो बेअदबी हो गई अरे ये तो हुसैन का भाई है सबके सब घोड़े से उतरे सब घोड़े से जमीन पर उतरे और जब घोड़े से जमीन पर उतरे हैं तो अब क्या हो रहा है हुसैन तो भाई कह चुके हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़ते हैं बगलगीर होते हैं मुबारकबाद देते हैं ऐ होर मुबारकबाद कबूल करो तूने बातिल को छोड़ा हक के राह पर आ गया हजरत अबुल फजल अब्बास ने अलम का फरेरा उनके सर पर खोल علم کی ہوا حضرت ہود تک پہنچی. عباس علمدار نے اپنے سینے سے لگا کر مبارکباد دی, اے ہود مبارکباد قبول کر, تو نے حق کو قبول کر لیا. سب آتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں. حسین نے کیا کہا تھا, میرے بھائی علی اکبر آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے اور کہتے ہیں چچا ہود ہمارا سلام قبول کرو. یہ جب مبارکباد کا شور بڑھ رہا تھا تو آوازیں خیموں تک گئی اور جناب زینب نے اون محمد کو بلایا, اے اون محمد ذرا جی اما کا یہ بات شور کیسا ہے, یہ مبارکباد کس کو دی جا رہی ہے؟ اب اون محمد کے معصومیت کے جملے سنیے گا. اون محمد کہتے ہیں اما وہ جو شخص تھا نا جس نے ہمارا راستہ روکا تھا, وہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا وہ تھا نا اما, وہ اب ماموں کے پاس آ گیا ہے, ماموں کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا ہے. جناب زینب خوش ہوئی اور کہا جاؤ بیٹا یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے, اے اون محمد جاؤ خود کے پاس جاؤ اور جا کر ماموں کہہ کر سلام کرنا. جب حسین نے بھائی کہا ہے تو میرا بھی بھائی, ماموں کہہ کر سلام کرنا اس سے کم نہیں, اور کہنا اما دعائیں دے رہی ہیں. جناب اون محمد چھوٹے چھوٹے بچے 7-8 سال کے آئے, وہاں پہنچے جہاں پر جناب ہود امام حسین سے اور دیگر ساتھیوں سے بات چیت کر رہے تھے اور وہاں پر کہا مامو ہود ہمارا سلام قبول کیجیے. مامو ہود اما نے سلام کہلوایا ہے اور کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو دعائیں دے رہی ہیں. ہود کا چہرہ پیلا پڑ گیا, ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے. ہود امام حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فرزند رسول آپ نے تو معاف کر دیا, آپ سے مجھے یہی توقع تھی, آپ کریم ابن کریم ہیں, توقع تو مجھے آپ سے یہی تھی, مگر فرزند رسول مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا تو ان بیویوں کی محملوں سے رونے کی آواز آئی تھی. میں نے شہزادی زینب کو رلایا ہے, اے فرزند رسول کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ بی بی زینب مجھے معاف کر دے تاکہ میں سکون سے مر سکوں, میں سکون سے اپنی جان دے سکوں. حسین کہتے ہیں آؤ خود میرے ساتھ, آؤ میرے ساتھ چلو. ہور آئے خیمے کے قریب, آئے خیمے کے باہر ہور ہیں, خیمے کے اندر حسین ہے, بی بی زینب کو بلایا, درمیان میں پردہ ہے اور حسین کہتے ہیں اے زینب ہور تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ہور نے کیا جملہ کہا؟ علامہ حضرت حسن زیدی فرماتے ہیں ہور نے ایک جملہ کہا, بی بی آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کی چادر کا واسطہ, آپ کو آپ کی ماں سیدہ ان کی چادر کا واسطہ, اس گنہگار کو معاف کر دیجیے. جناب زینب جواب میں کیا کہتی ہیں, اے بھائی ہور تم تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں, یہ کریم کا گھرانہ ہے, یہ کریم گھرانہ, یہ کریموں کا گھرانہ. جناب زینب اگر یہ کہہ دیتی میں نے تجھے معاف کیا وہ بھی کافی تھا, مگر زینب نے یہ نہیں کہا, زینب نے کہا اے ہور تم تو مجھے شرمندہ کر رہے ہو. ہاں مگر ہور اب ایک مسئلہ تو ہے, بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور وقت ہوتا نا تو میں تمہیں اپنا مہمان بناتی, تمہاری دعوت کا انتظام کرتی, تمہارے لیے دسترخوان سجاتی. ارے لیکن آج میں کیا کروں, آج انتظام نہیں ہو سکتا ہور, لیکن ہور علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے, قیامت کا دن ہوگا میرے بابا کی حکومت ہوگی, علی کی بیٹی تیرے سے وعدہ کرتی ہے کہ تیرے لیے دسترخوان سجائے گی. یہ آج کی دعوت ادھار نہیں ہور, یہ آج کی دعوت ادھار نہیں, قیامت کے میدان میں جنت میں میں زینب تیرے لیے دسترخوان سجاؤں گی, تیری دعوت کروں گی, یہ آج کی دعوت ادھار رہی. زینب کہتی جاتی ہے, ہور کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں اور اب زینب کہتی ہے ہاں ہور اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک کام تو علی کی بیٹی ضرور کرے گی, اگر اس بے حیا فوج نے مجھے مہلت
کو تجھ کو احتشام اور عظیم و شان طریقے سے منانے کے لیے صادق ٹرسٹ نے جو آزاداری شعر آپ کو پیش کیے ہیں وہ ضرور آپ عطیہ کیجیے تاکہ یہ تمام انتظام بہترین طریقے سے آگے چلے. جاتے ہوئے ہر آدمی اگر ایک ایک شعر لے لے تو یہ ہمارے مرد و خواتین یہ 3000 کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.